الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك، وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. سورہ بنی اسرائیل کی ہم تفسیر پڑھتے ہیں معرف القرآن جلد نمبر 5 سے اس کلاس کے اندر، اور یہ جو آیات ابھی تلاوت کی گئی تھیں ان کا ہم ترجمہ پڑھ کے خلاصہ تفسیر پڑھ رہے تھے پچھلی کلاس جو پچھلے ہفتے ہوئی تھی پیر کے دن. اس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے خلاصہ تفسیر میں پیج نمبر 490 490 کے اوپر، کہ یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، تو حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تحت لکھا ترجمہ فرماتے ہوئے، اور بین القوسین ود ان دا بریکٹس مختصر تفسیر فرماتے ہوئے کہ اور جب آپ تبلیغ کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن پڑھنا ہی یہی تبلیغ تھا. ٹھیک ہے، یہی تبلیغ تھا، یعنی یقرو علیہم یتلو علیہم آیاتی ہی، ہے نا. اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت کے مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد کیا بیان فرماتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتی ہی، کہ یہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تلاوت کرتے تھے وہ ایسے نہیں خالی کہ جیسے آج کل کے قاری حضرات جو ہیں وہ کسی جلسے کے اندر تلاوت کرتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ سر دھنتے ہیں. ٹھیک ہے، سر دھنتے ہیں، کیا زبردست تلاوت کی ہے، کیا زبردست قرآت ہے. ٹھیک ہے، سمجھ ومج میں کچھ نہیں آ رہا ہوتا، اور نہ جو ہے وہ قاری صاحب کا مقصد جو ہے وہ تبلیغ ہوتا ہے بلکہ قرآت سنانی ہوتی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے نہیں قرآت کرتے تھے بلکہ تبلیغ کے لیے، کیونکہ عربوں سے مخاطب تھے اور قریش سے مخاطب تھے، اور قرآن مجید قریش کے لہجے میں ہی اللہ رب العزت نے نازل فرمایا تھا تاکہ قریش کے لیے اس کو سمجھنا آسان ہو سکے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ان لوگوں کے سامنے قرآن مجید پڑھتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، پردہ حائل کر دیتے ہیں، تو پھر پڑھنے کا فائدہ کیا، کیوں پڑھتے تھے؟ اگر پردہ حائل کر دینا تھا اور یہ لوگ تو آخرت پر ایمان رکھتے ہی نہیں تھے، ان میں سے تو کوئی بھی آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تھا، تو پھر تو یہ ہو گیا نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک پردہ حائل کر رہے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو جو ہے یعنی تلاوت کی آواز ہی نہ آ سکے، تلاوت جو ہے وہ سنائی نہ دے سکے. ٹھیک ہے، تو پھر فائدہ کیا ہوا تلاوت کرنے کا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیوں تلاوت کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کیوں کہتے تھے تلاوت کرنے کا؟ یعنی کہ یہ ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے آپ کسی سے کہیں کہ ہاں بھائی جا کر کے تم میرا میسج دے کر کے آ جاؤ. ٹھیک ہے، اچھا، یا ایسے کہیں کہ جیسے کہ نا آپ واٹس ایپ کے اوپر آج کے دور میں، ٹھیک ہے، آپ اپنے جیسے گھر میں کسی فرد سے کہیں کہ بیٹا تم جو ہے نا وہ میسج ڈال دینا لوگوں کو کہ ہمارے گھر میں جو ہے نا وہ دعوت ہے، تو سارے دعوت میں آ جائیں. ٹھیک ہے، اب جب بیٹے صاحب جو ہے نا وہ واٹس ایپ کے اوپر میسج ڈالنے والے ہوں نا، اس وقت آپ وائی فائی کو سوئچ آف کر دیں، وائی فائی کا بٹن آف کر دیں. ٹھیک ہے نا، اس کا تار نکال دیں. اب بیٹے صاحب نے واٹس ایپ کے اوپر میسج ٹائپ کر کے سینڈ کا بٹن دبا دیا لیکن وہ پہنچا ہی نہیں، राइट, जिन लोगों को दावत देनी थी वहां तक तो वो मैसेज पहुंचा ही नहीं। क्यों? इसलिए कि आपने खुद ही जो है वो वाईफाई बंद कर दिया था, इंटरनेट बंद कर दिया था। ठीक है, तो फिर आपने बच्चों को कहा क्यों था कि आप जो है वो मैसेज डाल दें? ठीक है, तो बजाहिर अल्फाज से कैसे लग रहा है कि यही वाली सिचुएशन है, कि अल्लाह ताला कह भी रहे हैं कि उनको मेरा मैसेज पहुंचाओ, और साथ साथ जो है ना वो दरमियान में पर्दा भी हायल कर रहे हैं, रुकावट भी पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये इसका मतलब नहीं है। ठीक है, तो जाहिर अल्फाज से मतलब नहीं समझ में आ रहा। सही है, तो फरमा रहे हैं कि जी अब यानी अकल शरीफ इस्तेमाल करनी पड़ेगी इसके लिए। ठीक है ना, अकल शरीफ को तह करके रख देने से बात समझ में नहीं आएगी, तो अकल शरीफ इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अकल शरीफ क्या मतलब? अकल शरीफ इस्तेमाल करनी पड़ेगी, इसका क्या मतलब कि हर एक के दिमाग में एक अकल है, तो हर बंदा अपनी अकल के मुताबिक इस बात को समझे, ये मतलब है इसका। इसका मतलब ये भी नहीं है कि अकल शरीफ इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हर बंदा जो है ना वो अपनी अकल इस्तेमाल करे, क्योंकि हर बंदे के पास अकल है। ठीक है ना, जो मेंटली रिटार्डेड लोग हैं जिनका के दिमाग यानी फिजिकली खराब है जिनका दिमाग, ठीक है, जिनको के जहनी तौर पर मफलूज डॉक्टर ने डिक्लेयर किया हुआ है, तो वो तो इस बात को नहीं समझ सकते ना, वो तो क्लास में ही नहीं बैठेंगे ना, वो तो कुरान मजीद की तिलावत यानी कुरान मजीद की तफसीर ही नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उन बेचारों का तो दिमाग ही जो है वो काम नहीं कर रहा। तो जिसका दिमाग काम कर रहा है वही ये बात सुनेगा ना, ठीक है ना, जिसकी अकल जो है वो काम करती है वही ये बात पढ़ेगी, वही ये बात सुनेगी, ठीक है ना, वही क्लास लेगी। सही है ना, मेंटली रिटार्डेड इंसान तो क्लास ही नहीं लेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हर बंदा अपनी अकल इस्तेमाल करे, क्योंकि उसके पास अकल है। ठीक है ना, उसके पास अकल है। अच्छा, इसके लिए ना अंग्रेजी जुबान के अंदर एक मुहावरा है, अंग्रेजी जुबान के अंदर एक मुहावरा है, अंग्रेजी जुबान में ना यहाँ पर जो अकल की बात हम कर रहे हैं ना, तो अकल के लफ्ज के लिए अंग्रेजी के उस मुहावरे के अंदर लफ्ज इस्तेमाल होता है ओपिनियन। ओपिनियन क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब होता है उर्दू में राय, राय। ठीक है, ओपिनियन। तो अंग्रेजी में कहते हैं के ओपिनियंस आर लाइक बेली बटन्स। बेली बटन समझते हैं ना, नाफ को कहते हैं, जो पेट के ऊपर एक वो होती है ना नाफ, ठीक है, उसको बेली बटन कहते हैं। तो अंग्रेजी का एक मुहावरा है, कहते हैं कि ओपिनियंस आर लाइक बेली बटन्स, एवरी वन हैज वन। ठीक है ना, हर एक के पास एक है, हर एक के पास एक ओपिनियन है, हर एक की अपनी एक राय है। ठीक है, तो राय कैसे होती है? राय कैसे होती है? जब इंसान अपनी अकल इस्तेमाल करता है, जब इंसान अपनी अकल इस्तेमाल करता है ना, तो उसकी एक राय बन जाती है किसी चीज के बारे में, है ना, कि भाई ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, ये चीज जो है वो गर्म, ये चीज जो है वो मुफीद है, ये चीज गैर मुफीद है। ये एक राय होती है, हर इंसान की अपनी कोई ना कोई राय होती है, हर इंसान की अपनी कोई ना कोई राय होती है, हर इंसान की। ठीक है, हत्ता के बच्चे की भी अपनी एक राय होती है, बच्चा भी समझता है कि हाँ भाई ये चीज जो है ना वो अच्छी है, ये चीज बुरी है। कोई बच्चा कहता है ये चीज बुरी है, कोई बच्चा कहता है ये चीज अच्छी है, कोई बच्चा कहता है ये चीज मुफीद है, कोई बच्चा कहता है ये चीज गैर मुफीद है। तो बच्चे बच्चे की राय होती है, बड़े बड़े की राय होती है, मर्द मर्द की राय होती है, औरत औरत की राय होती है। ठीक है ना, राय कैसे बनती है? अकल की बुनियाद पर बनती है, अकल की बुनियाद पर राय बनती है। ठीक है ना, जिसका दिमाग काम कर रहा होता है उसकी अपनी एक राय होती है। सही है, तो ये जो कुरान मजीद के अल्फाज हैं कि हम उनके और आपके दरमियान है ना वो एक पर्दा हैल कर देते हैं, जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? हम अपनी अकल से अपनी राय बना लेंगे कि इसका ये मतलब है, मैं समझती हूँ कि इसका ये मतलब है। कोई दूसरी औरत कहेगी नहीं, मैं समझती हूँ इसका कुछ और मतलब है। तीसरी औरत कहेगी मैं समझती हूँ इसका फलाना मतलब है। ठीक है, तो क्या अकल की बुनियाद पर हम फैसला करेंगे? ठीक है, फिर तो हर बंदा जो है वो इसकी अपनी एक अलग तफसीर बनाएगा, अपनी एक अलग राय होगी उसकी। ठीक, तो हम अकल की बुनियाद पर तफसीर नहीं करेंगे, बल्कि अकल को हम इस्तेमाल करेंगे, अकल को हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन किस काम के लिए इस्तेमाल करेंगे? अकल को हम किस काम के लिए इस्तेमाल करेंगे? जो हमें इसकी तफसीर हमें हमारे बड़ों ने बताई है, ठीक है, जो इसकी तफसीर उलमा ने बताई है, ठीक है, उस तफसीर को समझने के लिए हम अकल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये जुमला जरा सा याद रख लें। ठीक है, अकल हम किस लिए इस्तेमाल करेंगे? जो इल्म हमारे बड़ों ने हमें बताया है, उस इल्म को समझने के लिए अकल इस्तेमाल करेंगे। इन्होंने लिख दिया नकल के लिए इस्तेमाल करेंगे। नहीं जी, नकल के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, अकल समझने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, पहले समझेंगे फिर आगे नकल कर सकेंगे। ठीक है ना, तो नकल की बात अभी ना करें, अभी तो समझने की बात करें ना, समझने की। पहले समझेंगे तब जाके नकल करें ना, उल्टा गलत समझ लिया तो फिर गलत ही नकल कर देंगे आगे जा करके। ठीक है, तो अकल का इस्तेमाल किस लिए होता है? जो बड़े बात बता रहे होते हैं ना, उसको समझने के लिए अकल का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, यानी गौर से सुनना होता है, अच्छी नीयत से सुनना होता है। बेशक आपकी कोई राय होगी, लेकिन उस राय को साइड पे रखना होता है, परे रखना होता है। ठीक है ना, अपनी राय को साइड पे कर देना होता है, और जो इल्म ऊपर से आ रहा है, बड़ों से आ रहा है। अब बड़े के अंदर दर सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत। उनके बाद इंसानों में सबसे बड़ा कौन है? नबी अलैहिस्सलाम। फिर उनके बाद नबी अलैहिस्सलाम के बाद कौन बड़ा है? उलमाए कराम में सबसे बड़े उलमाए कराम सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला। ठीक है ना, तो बड़ों से जो इसका मतलब हम तक पहुंच रहा है, अल्लाह बवास्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि अल्लाह ताला डायरेक्ट हमसे बात नहीं कर रहा। ठीक है ना, ये नहीं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की आयात तो नाजिल कर दी, अब तफसीर भी अल्लाह ताला की ही अल्फाज में तफसीर आ रही है हमारे पास। नहीं, अल्लाह ताला के अल्फाज में कोई तफसीर मौजूद है? नहीं, अल्लाह ताला के अल्फाज तो सिर्फ कुरान मजीद के अल्फाज है ना, इनकी तफसीर तो अल्लाह ताला के अल्फाज में हमारे पास नहीं पहुंची। ठीक है, तो तफसीर तो किन के अल्फाज में पहुंची? या तो नबी अलैहिस्सलाम के अल्फाज में पहुंची, या सहाबाए कराम के अल्फाज में पहुंची, या उलमा व मशायख के अल्फाज में हम तक तफसीर पहुंची। ठीक है ना, तो ये सारे हमारे बड़े हैं। ठीक है ना, तो जो इल्म हमारे बड़ों से हम तक पहुंचा है ना, उस इल्म को समझने के लिए अकल इस्तेमाल करनी पड़ती है। ठीक है ना, अगर सुम्मुम बुकमुन उम्युन, अंधे बहरे गूंगे की तरीके से क्लास में आके बैठ जाएंगे तो हमारे बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है ना, अगर अंधे बहरे गूंगे की तरह से आके किसी क्लास में बैठ जाएंगे तो हमारे बात समझ में नहीं आएगी, जब तक हम अकल इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी तवज्जो से सुनेंगे नहीं, तब तक बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है ना, अच्छा दूसरी क्या वजह कि जिसकी वजह से बात समझ में नहीं आती? उसकी वजह जो है ना, वो इसी इन्हीं आयात की तफसीर के अंदर है कि जिसकी वजह से बात समझ में नहीं आती, यानी गौर से सुन तो रहे हैं लेकिन फिर भी बात समझ में नहीं आ रही, उसकी क्या वजह होती है? ठीक है, उसकी वजह ये होती है कि अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना ना कि ओपिनियंस आर लाइक बेली बटन्स, एवरीवन हैज वन। हर इंसान की एक राय है, हर इंसान की एक राय है। ठीक है ना, तो अब किस बंदे को बात समझ में नहीं आ रही होती? पहला बंदा तो हमने आपको बता दिया कि जो सुम्मुम बुकमुन उम्युन की तरीके से बात सुनता है ना, उसको बात समझ में नहीं आती। ठीक है, यानी जो अकल इस्तेमाल नहीं करता ना, उसको तो बात समझ में नहीं आती। दूसरा बंदा बताएं आप कि जिसको बात समझ में नहीं आती। जी, अंग्रेजी मुहावरे को अपने सामने रख करके बताएं कि दूसरा बंदा जिसको बात समझ में नहीं आती वो कौन होता है? ठीक है, डायरेक्ट मैसेज में जवाब लिखें तो आपके हक में बेहतर है। जिसकी नीयत सुनने की नहीं, नुक्ताचीनी करने की हो। जो अमल की नियत नहीं होती, नहीं, जो अपनी ही राय कायम करके उस पर पक्का हो जाए। जज़ाकुमुल्लाह, माशाल्लाह, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दे दिया, ठीक है ना। जो अपनी ही राय कायम करके उसी पर पक्का रहे ना, उसकी भी बात समझ में नहीं आती। लिख लें इस बात को, अल्लाह का वास्ता ही दे सकता हूँ, उससे ज्यादा और क्या कर सकता हूँ। आपके मार्क्स तो नहीं काट सकता, नहीं, जिसने लिखा होगा उसके मार्क्स कट जाएंगे, ये तो मेरे पास में नहीं है, मजबूर है ना भैया, ठीक है। इसको खुदा के वास्ते लिख लें, जो अपनी राय कायम करके उसके ऊपर पक्का हो जाए ना, उसको भी बात समझ में नहीं आती, उसको भी बात समझ में नहीं आती। यानी ये बंदा तो गौर से सुन रहा है, ये बंदा गौर से बात तो सुनता है, लेकिन इसकी पहले से एक राय है, और ये उस राय को जो है ना वो समझता है यही असल राय है। मेरी राय इज द राय, माई ओपिनियन इज दी ओपिनियन। अब ये बंदा आपकी बात तो गौर से तो सुन रहा है, ठीक है ना, लेकिन इसकी भी बात समझ में नहीं आई, ठीक है। हाँ, दूसरे आप किसी और ने भी सही जवाब लिखा था कि जिसने अपना फिक्स्ड ओपिनियन बनाया, फिक्स्ड ओपिनियन जिसने बनाया हुआ ना, उसको भी बात समझ नहीं आती, जो अपने ओपिनियन को ज्यादा अहमियत देता हो, ठीक है ना। जदाकुम, जो अपने ओपिनियन को ज्यादा अहमियत देता हो ना, उसको भी बात समझ में नहीं आती, ठीक है ना। अगले बंदे को सुन रहा है, यानी कोई इंपॉर्टेंस दे रहा है अगले बंदे को, ठीक है, लेकिन अपनी राय, मेरी राय ज्यादा ज्यादा सही है, मेरी राय ज्यादा सही है भाई, ठीक है, आप भी बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छे हैं, मैं आपकी भी बात सुनती हूँ, ठीक है ना, आप भी बहुत बड़े हैं, मैं आपकी बहुत तारीफ भी करती हूँ, ठीक है ना, लेकिन मेरी राय तो मेरी राय है, मेरी राय तो मेरी राय है, मैंने इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, चाहे आप कितने बड़े क्यों ना हो जाए। इसके ऊपर हमें याद आता है, हमारे हजरत जो है ना वो एक रिवायत बयान करते हैं, इस रिवायत की सेहत का मुझे नहीं पता, अक्सर जो है वो मशायख की जो बयान करता रिवायत होती हैं वो ज़यीफ भी होती हैं, तो सेहत यानी ये नहीं पता मुझे कि सही रिवायत है कि ज़यीफ है कि हसन है क्या है, लेकिन वो बहरहाल है रिवायत। तो बयान करते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नफ्स को पैदा फरमाया, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानी नफ्स को पैदा, या जो भी नफ्स था ना, इंसानी नफ्स जरूरी नहीं है, जिन्नों के पास भी नफ्स होता है, तो अल्लाह ताला ने जब नफ्स को पैदा फरमाया ना, तो उससे पूछा कि मैं कौन और तू कौन, ठीक है, क्या पूछा कि मैं कौन और तू कौन, तो उस नफ्स ने जवाब दिया कि अंता अंता अना अना, तू तू है मैं हूं। सही है, क्या जवाब दिया कि अल्लाह आप हैं, यानी आप अल्लाह हैं और मैं हूं, मैं भी, राइट, मैं भी हूं। सही है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ना उसको अजाब दिया, तो वो बहुत सारे अजाब हैं, पहले अल्लाह ताला ने उसको शायद, मतलब मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली वो रिवायत जब पढ़ी थी, कई दफा पढ़ी तो है लेकिन जहन में नहीं है, कि पहले उसको जो है ना वो जैसे मिसाल के तौर पर गर्मी का अजाब दिया, ठीक है ना, बड़ा लंबा और सा जो है ना उसको गर्मी में रखा, फिर उसके बाद उसको बुलाया, उसे पूछा मन अंता मन अना, राइट, कि तू कौन है और मैं कौन हूं, फिर उसने ये जवाब दिया अंता अंता अना अना, आप हैं मैं हूं। सही है, फिर अल्लाह ताला ने उसको किसी और चीज का जवाब अजाब दिया, सर्दी का जैसे अजाब दिया, बड़े लंबे अरसे सर्दी में रखा, फिर उसके बाद उसको बुलाया और उसे पूछा तू कौन है मैं कौन कौन, फिर उसने यही जवाब दिया आप हैं मैं हूं। सही है, आप हैं यानी आप भी हैं, आप भी हैं बड़े लेकिन मैं भी हूं बड़ा। सही है, फिर उसको अजाब दिया, फिर उसको बुलाया, फिर उसने ये जवाब दिया, बिलाखिर अल्लाह ताला ने उसको ना भूख का अजाब दिया। सही है, किसका अजाब दिया, भूख का अजाब दिया। सही है, और जब भूख का खूब दबा करके उसको अजाब दिया ना, फिर उसके बाद उसको बुलाया तो उससे पूछा तो उसने क्या कहा कि अल्लाह बस आप ही आप हैं, मैं नहीं हूं। सही है, तो रोजे की फजीलत के तहत जो है ना वो ये रिवायत बयान की जाती है कि ये जो भूखा रखना है ना, इससे नफ्स की जो है वो इस्लाह होती है, लअल्लकुम तत्तहून, ठीक है ना, अगर अल्लाह ताला ने तुम पर रोजे फर्ज किए, जैसे कि तुमसे पिछली उम्मतों के ऊपर रोजे फर्ज किए थे, लअल्लकुम तत्तकून, शायद कि तुम मुत्तकी बन जाओ, यानी अपनी मैं को मिटाओ, अपनी मैं को मिटाने के काबिल हो सको, अपने आप को मिटाने के काबिल हो सको, ठीक है ना, अपनी राय को, अपनी राय, राय तो है तुम्हारी, क्योंकि अकल तो तुम्हारे पास है, तो राय तो तुम्हारे पास होगी, लेकिन इस राय को जो है ना वो दबाना, अपनी मैं को खत्म करना, ठीक है ना, ये मैं जो है ना, ये जब तक तुम खत्म नहीं करोगे ना, तो उस वक्त तक तुम कुछ बन नहीं सकोगे, तुम किसी काबिल नहीं बन सकोगे सवाए शर के काबिल होने के। तुम शर के काबिल तो बन सकोगे, खैर के काबिल नहीं बन सकोगे, ठीक है। तो ये अपनी मैं को मिटाना जो है ना, ये जिसकी मैं नहीं मिटती है ना, तो उसको भी बात समझ में नहीं आती, ठीक है। तो ये तो अब ये जो काफिर थे ना, जब नबी अलैहिस्सलाम उनके सामने कुरान मजीद पढ़ते थे ना, तो इन काफिरों के भी जो है ना फिर दो किस्में होती थी। एक वो किस्म होती थी, यानी काफिर तो काफिर होता है, यानी आखिरत का ना मानने वाला, ठीक ना, तो आखिरत को तो सारे ही नहीं मानते थे, ऐसा तो नहीं था कि कुछ काफिर आखिरत को मानते थे, कुछ काफिर आखिरत को नहीं मानते थे, नहीं, आखिरत को तो हम सारी काफिर नहीं मानते थे, ठीक है। तो यहां पर फिर अल्लाह ताला पर्दा किसके किसके सामने हायल कर देते थे, ठीक है ना, वो फिर तफसीर से हमें पता चलता है, जो हमें अपने बड़ों से मिलती है। तो फरमाते हैं कि जब आप तबलीग के लिए कुरान पढ़ते हैं, तो हम आपके और आप और उन लोगों के दरमियान एक पर्दा हायल कर देते हैं जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, और वो पर्दा ये है कि हम उनके दिलों पर हिजाब डाल देते हैं, इससे कि वो इस कुरान के मकसूद को समझ सकें, मकसद क्या है इसका, मकसद क्या है इसका, ठीक है, उसको समझ सकें, हम इस उन, ठीक है ना, उनको उनकी मत मार देते हैं, उनको मकसद समझ में, और उनके कानों में बोझ डाल देते हैं, इससे कि वो इनको हिदायत हासिल करने के लिए सुने, ठीक है। मतलब ये है कि वो पर्दा उनकी नाफहमी का और इसका है कि वो समझने का इरादा ही नहीं करते, ठीक है ना, समझने का इरादा ही नहीं करते, क्योंकि उनको तो पता है कि भाई वो तो समझते हैं कि हमारी राय तो है ना बस एक, ठीक है ना, अब हमें दूसरे की राय को तो समझने से क्या फायदा होगा, दूसरे की राय मानने से हमें क्या फायदा होगा, ठीक है ना, वो नबी अलैहिस्सलाम की बात को भी राय समझते हैं खाली, हालांकि नबी अलैहिस्सलाम जो बात फरमाते थे ना, वो नबी अलैहिस्सलाम की राय नहीं होती थी, वो नबी अलैहिस्सलाम की राय नहीं होती थी, नबी अलैहिस्सलाम का ओपिनियन नहीं होता था, लेकिन अलमरु यकीसु अला नफ्सी, मर्द जो है ना वो दूसरों को भी अपने ऊपर ही कयास करता है, चूंकि इनका अपना एक ओपिनियन होता था ना, हर चीज के बारे में अपना एक ओपिनियन होता था, तो ये समझते थे कि नबी अलैहिस्सलाम का भी बस ये एक ओपिनियन है, मोहम्मद रसूल मोहम्मद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका भी बस ये एक ओपिनियन है, लेकिन वो ओपिनियन कोई थोड़ी होता था नबी अलैहिस्सलाम का, हकीकत क्या थी, वो तो नबी अलैहिस्सलाम को जो वही अल्लाह ताला की तरफ से आ रही होती थी वो वही होती थी, वो ओपिनियन कोई थोड़ी होता था नबी अलैहिस्सलाम, लेकिन ये लोग समझते थे भाई अना अना अंता अंता, हमारा भी अपना एक ओपिनियन है, उनका भी अपना एक ओपिनियन है, एवरीवन हैज द राइट टू हिज ओपिनियन, ठीक है, हम हमारा अपना ओपिनियन का हक है, उनका अपना ओपिनियन का हक है, ठीक है, तो वो समझने का इरादा ही नहीं करते थे, जिससे वो आपकी शान नबूवत को पहचान सके, ठीक है। और जब आप कुरान मजीद में सिर्फ अपने रब के औसाफ व कमालात का जिक्र करते हैं, और ये लोग जिन माबूदों की इबादत करते हैं उनमें वो औसाफ नहीं है, तो वो लोग अपनी नाफहमी बल्कि कुछ फहमी के सबब उससे नफरत करते हुए पुष्ट फेर कर चल देते हैं, तो ये लोग अपनी नाफहमी बल्कि फरमाया कि कुछ फहमी, यानी इनकी समझ जो थी ना, ये नहीं थी कि इनके पास समझ थी नहीं, इनके पास समझ थी, यानी इनका एक ओपिनियन था, इनकी एक राय थी, तो नाफहमी नहीं है असल में, बल्कि क्या है, कुछ फहमी है, कुछ फहमी का मतलब होता है उनकी राय गलत थी, ठीक है ना, उनका ओपिनियन गलत था, तो अपने गलत ओपिनियन की वजह से वो नफरत करते हुए पुश्त फेर कर चल देते हैं। ठीक है ना, जैसे आप किसी की बात सुने और वो जो बात कह रहा है वो आपकी राय के खिलाफ है, ठीक है ना, आपकी समझ के खिलाफ है वो बात, तो अब बजाय इसके कि आप उसकी बात को समझने की कोशिश करें और सोचें हाँ भाई ये कोई बड़े हैं, ये सादिक हैं, ये अमीन हैं, ये इल्म वाले हैं, तो मैं इनकी बात समझने की कोशिश करता हूँ, आप कहें नहीं मेरी ओपिनियन से तो ये बात मैच नहीं कर रही, तो इस वजह से पीठ फेर करके चले जाए वहां से। तो ये लोग यही काम करते थे कि पुश्त फेर करके चल देते थे, हालांकि इनको नबी अलैहिस्सलाम की निस्बत का पता था कि नबी अलैहिस्सलाम जो है ना ये मामूली आदमी नहीं है, ठीक है ना, ये मामूली आदमी नहीं है, इनको तो हमें सुनना चाहिए, इनको तो हमें समझने की कोशिश करना चाहिए, मामूली आदमी की थोड़ी है, इनके पीछे से गलत लोगों के साथ कोई ताल्लुक, गलत लोगों के साथ कोई निस्बत की थोड़ी है, तो इनकी बात हमें सुनना चाहिए, हमें समझना चाहिए, लेकिन ये पीठ फेर करके चल देते थे क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की बात इनकी राय के खिलाफ होती थी। आगे उनके इस अमले बातिल पर वईद है, यानी ये जो बुरा अमल करते थे ना उसके ऊपर सदा की धमकी है, वईद मतलब सदा की धमकी, कि जिस वक्त ये लोग आपकी तरफ कान लगाते हैं तो हम खूब जानते हैं जिस गर्ज से ये कुरान को सुनते हैं, यानी ये कान लगा के सुनते थे, ठीक है, ये गौर से सुनते थे, कान लगा करके सुनते थे, ठीक है, ये उन लोगों में से नहीं थे जो के सुने ही ना, जो के अपने जिंदगी में मसरूफ रहे और आप की बात ही ना सुने, नहीं, ये लोग नबी अलैहिस्सलाम की बात सुनते थे और कान लगा करके सुनते थे, ठीक है, जैसे क्लास में इस वक्त कितने 63 स्टूडेंट्स मौजूद है ना, उम्मीद है कि सारे कान लगा के सुन रहे हो, और उसके अलावा दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस क्लास की इनविटेशन दी गई लेकिन वो है ही नहीं यहाँ पे, वो नहीं आते क्लास के अंदर, ठीक है, तो जो क्लास में आते ही नहीं, हालांकि उन तक मैसेज गया है, उनको किसी ने यानी क्लास में लाने की कोशिश करी है, तो उनकी मिसाल ऐसे है कि जैसे वो सुनने के लिए तैयार नहीं, वो क्लास में ही नहीं आते, हालांकि उनको दावत दी गई है, समझाया गया है, बहुत सारी बातें बताई गई, लेकिन फिर भी वो नहीं आते, तो वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे मौजूद हैं तो वो तो सुनने के लिए मौजूद है, वो कान लगा के सुन रहे हैं, ठीक है, कान लगा के सुन रहे हैं, ठीक है, तो ये लोग इसी तरीके से कान लगा के सुनते थे, सही है, तो हम खूब जानते हैं कि किस गर्ज से ये कुरान को सुनते, यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि इनकी नीयत क्या होती है कुरान मजीद को सुनने की, कि वो गर्ज महज एतराज और तानो नुक्ता चीनी की है, और जिस वक्त ये लोग कुरान सुनने के बाद आपस में सरगोशियां करते हैं हम इसको भी खूब जानते हैं, ठीक है, यानी बाद में जैसे जाकर के ना आप तकरार क्लास में जाएं और वहां पे जाकर के जो क्लास के अंदर बातें की गई है ना उनके ऊपर एतराज और नुक्ता चीनी का, ये उन्होंने क्यों, ये बात तो ऐसे तो नहीं होती है, इस बात तो है ना, ये जो हजरत कह रहे थे ना ये ऐसे तो नहीं होती है, तो पता नहीं क्यों कह रहे थे इस तरह की बात है ना, क्यों खामखा जो है वो इस तरह के टॉपिक्स छेड़ते रहते हैं, क्यों खामखा की इस तरह की तनकीदी बातें करते रहते हैं, है ना, अब आप थोड़ी देर के बाद तकरार क्लास में जाएं अपनी एक सो कॉल्ड मतलब आई ज्यूम पे कोई आपने तकरार क्लास बनाई हुई है उसमें जाएं और जा करके नुक्ता चीनी शुरू कर दें इसके ऊपर, लेकिन अब क्यों नुक्ताचीनी कर रहे हैं उसकी वजह होती है, देखिए हम बड़े आसानी से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं कि जी मैं तो इतराज नहीं करती, मैं तो नुक्ताचीनी करती नहीं करती, ठीक है, हालांकि हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम होता है कि हमारी एक राय होती है, हम उस राय को अबैंडन करने के लिए तैयार नहीं होते, ठीक है, तो बेशक जुबान से आप नुक्ताचीनी नहीं करते, जुबान से आप एतराज नहीं करते, लेकिन दिल में तो एतराज ही है ना, ठीक है, दिल में तो नुक्ताचीनी ही है ना, तो भी फायदा नहीं होगा, सही है, तो ये नुक्ताचीनी और एतराज करना जो है ना ये जरूरी नहीं है कि आप जुबान से इसका इजहार भी करें, अगर दिल के अंदर नुक्ताचीनी और ये है तो फिर वो फायदे को रोक देगी, ठीक है, तो ये लोग जो है वो बाकायदा मिलते भी थे, सरगोशियां भी करते थे, नुक्ताचीनी भी करते थे। जिस वक्त ये लोग कुरान सुनने के बाद आपस में सरगोशियां करते हैं, हम उसको भी खूब जानते हैं। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना, वो हर चीज से वाकिफ है, ठीक है, उनसे नहीं छुप सकते। नबी अलैहिस्सलाम को नहीं पता होता था कि ये लोग पीछे जाकर नुक्ताचीनी कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम आलिम और गायब नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम आलिम और गायब नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला तो है ना आलिम और गायब, ठीक है। अल्लाह ताला को सब पता होता था ये लोग क्या कर रहे हैं। जब ये जालिम यूं कहते हैं कि तुम लोग, यानी इनकी बरादरी में से जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लग गए हैं, महज ऐसे शख्स का साथ दे रहे हो जिस पर जादू का खास असर यानी जुनून हो गया है, यानी ये जो अजीब अजीब बातें करते हैं ना, ये सब माले फोलिया है। माले फोलिया, माले फोलिया किसी जहनी बीमारी को कहते हैं, यानी कोई इस किस्म का जिसके आजकल मेडिकल टर्म्स है ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मिसाल के तौर पर OCD है ना, तो उसके लिए माली फोलिया टाइप का कोई उर्दू का लफ्ज होगा, ठीक है ना। यानी दिमाग में कोई रसूल ही है, दिमाग में कोई खराबी है, ठीक है। तो ये लोग जो है ना, वो नबी अलैहिस्सलाम के जो सहाबा थे, जो ईमान वाले थे, उन लोगों को कहते थे कि ये ना, ये दिमागी तौर पर ये किसी जहनी मर्ज का शिकार है, इस वजह से इनकी बात मान रहे हैं। बल्कि नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कहते थे कि ये सब तो वहमी बातें हैं, ये सब ऐसी दिमाग की खराबी है ना, नऊज़ुबिल्लाह। और ये ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखिए तो ये लोग आपके लिए कैसे कैसे अलकाब तजवीज करते हैं। मशहूर, इनके ऊपर तो जादू हो गया है, ये कैसा कैसा लकब आपको दे रहे हैं, आप मशहूर हैं, ठीक है। सो ये लोग बिल्कुल ही गुमराह हो गए हैं, तो अब हक का रास्ता नहीं पा सकते, क्योंकि ऐसी हठ धर्मी और जिद, और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा मामला, इससे इंसान की इस्तेदाद, फहमो हिदायत सल्ब हो जाती है, ठीक। तो ये लोग सरदाराने कुरैश थे ना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी बातें किया करते थे, ये तो यानी कस्में खा लेते थे कि हम हरगिज आपकी बात पे ईमान नहीं लेकर के आएंगे। हत्ता के नबी अलैहिस्सलाम के कजन्स भी थे, ठीक है ना, कजन्स, फर्स्ट कजन्स, चचा के बेटे, और ठीक है, भुप्पी का बेटा, चचा का बेटा, इतनी करीबी दोस्ती थी नबी अलैहिस्सलाम के साथ कि जिसको के उर्दू मुहावरे में कहा जा सकता है लंगोटिया यार, लंगोटिया यार, ठीक है ना। लंगोटिया यार क्यों कहा जाता है कि एक ही लंगोट के अंदर जो है ना, वो दोनों के पैर, यानी हर वक्त साथ साथ, हर वक्त साथ साथ, हर वक्त साथ साथ, जिसको लंगोटिया यार कहते हैं। ऐसे नबी अलैहिस्सलाम के कजन्स थे, लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम ने दीन की दावत देनी शुरू करी थी, तो उन्होंने ऐसे यानी इतना सख्ती से जवाब दिया था, हम हरगिज तुम्हारी इस बात के ऊपर ईमान नहीं लाए, हम हरगिज तुम्हारी बात नहीं माने, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम को इतना दुख हुआ था, इतना दुख हुआ था कि इन कजन्स ने बिल आखिर जब फतेह मक्का, बल्कि हाँ फतेह मक्का के मौके पर, या आई थिंक इससे थोड़ा पहले, अभी याद नहीं आ रहा, जब वो ईमान कबूल करने के लिए आए थे ना, इस्लाम कबूल करने के लिए आए थे, नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था, मिलने से इनकार कर दिया था। हत्ता के फिर जो है वो सिफारिशें आई थी, जौजा मुहतरमा की सिफारिश आई, शायद अबू बकर सिद्दीक रतन की, या अब्बास रतन की सिफारिश आई, फिर नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे मुलाकात में की हामी भरी थी। कितना दुख पहुंचाया होगा नबी अलैहिस्सलाम, ठीक है, ऐसे लोगों ने जिन्होंने इतना करीब से जानने के बावजूद और इतनी तारीफें करने के बावजूद क्यों इनकार कर दिया। आई हैव माई ओपिनियन एंड आई विल नॉट गिव अप माई ओपिनियन, इस वजह से इनकार कर दिया, ठीक है ना। तो अब हम जो है ना, वो असल वजह को समझे, जो हमारी खराबी की असल वजह है ना, ठीक है, कि हम गौर से सुनते भी हैं लेकिन फिर भी नहीं जो है ना वो बात समझ रहे होते, हमारी वजह कहीं यही तो नहीं है कि हमारा एक ओपिनियन है एंड वी हैव स्टक टू दैट ओपिनियन एंड वी आर नॉट विलिंग टू गिव दैट ओपिनियन। ये जो अपनी राय वाला मसला होता है ना, ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़, ठीक है। तो अब ये एक ऐसी जनरल खराबी होती है इंसान की। ठीक है, ये हर जगह पर अप्लाई होती है इसकी। जिस शख्स को राय वाला मसला पड़ जाएगा ना कि बस मेरी तो राय है, यही है मेरी राय, ठीक है, तो अब जो है ना वो हर जगह इस चीज को इस्तेमाल कर, हर जगह उसकी एक राय होती है, और वो ऐसी राय होती है कि जिसको वो अबैंडन करने के लिए, गिव अप करने के लिए, उसको जो है ना वो सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं, ठीक है। तो हम भी अपने अंदर टटोल करके देखें कि हमारा ये मसला तो नहीं है क्या, कि हमारी एक राय है उस मामले में जहां पे कि हमारी राय नहीं होनी चाहिए, हम अहल नहीं है उस राय के, लेकिन फिर भी हमने एक ऐसी राय बनाई हुई है कि जिसको कि हम छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं, ठीक है। तो इल्म हासिल करने का ये तरीका नहीं होता। अगर आप किसी के पास इल्म हासिल करने के लिए जा रहे हैं ना भाई, आप पहली बात ये कि जाए नहीं, आप क्यों जा रहे हैं इल्म हासिल करने के लिए? अगर आपको अपनी राय के ऊपर कायम रहना है तो आप इल्म हासिल करने के लिए मत जाए, ठीक है ना। आप किसी को बड़ा मत कहें, आप किसी को बड़ा मत कहें, आप कहें भी मैं ही बड़ा हूं, मैं ही बड़ी हूं, मुझे क्या जरूरत है किसी को बड़ा कहने की। बात समझ में आती है? जरा इस बात को और से सुने, और समझने की कोशिश, ठीक है, कि अगर आप ही बड़ी हैं तो फिर आप दूसरे को बड़ा क्यों कह रही हैं, ठीक है ना। अगर आप ही बड़ी हैं तो दूसरे को बड़ा कहने की क्या जरूरत है, ठीक है भाई, आप ही बड़ी हैं बस, ठीक है। अब आप जो है वो अपनी राय खुद से बनाए, खुद से उसके ऊपर अमल करें, खुद से चलें जैसे आपको चलना है। लेकिन ये जो है ना कहना कि नहीं, अंता अंता वह अना अना, आप हैं लेकिन मैं भी मैं हूं, आप हैं लेकिन मैं भी मैं हूं, ये जो है ना ये नहीं चलता कि दूसरे को भी, हाँ आप भी बड़े हैं, आप भी शेख हैं, और आप भी जो है वो उस्ताद हैं, और आप भी ये हैं, और आप भी वो हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं भी मैं हूं, राइट, मैं भी मैं हूं, ये जो है ना नहीं चलता, ये इंसान को कहीं पर नहीं छोड़ता, कहीं का नहीं छोड़ता। अब जिसका ये एटीट्यूड होता है ना, फिर उसकी जो है ना वो हर जगह ये एटीट्यूड होता है कि जी ठीक है, आप जो है वो अब बेगम साहब आए घर के अंदर, है ना, दीनदार बेगम साहब आए, है ना, दीनदार बेगम, पिछले जो बयान हुआ था इस हफ्ते से, पिछले जुम्मे को जो बयान हुआ था, उसमें उम्मीद है कि किसी ने तो सुना होगा, हम हजरत की किताब में से पढ़ रहे थे बीवियों के बारे में, ठीक है ना। तो अब बेगम साहिबा जो है ना, दीनदार बेगम साहिबा हैं जी, आलिमा बेगम साहिबा है, राइट, बेगम साहिबा आलिमा है। तो अब आलिमा साहिबा ने कहीं तो पढ़ा होगा ना कि भाई शोहर को जो है वो अल्लाह ताला ने बड़ा बनाया है, और जो है वो मर्द को कवाम बनाया है, और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बीवी के ऊपर जो है वो शोहर की अताअत, अल्लाह की अताअत के बाद शोहर की अताअत जो है वो फर्ज है, ठीक है ना। तो आलिमा साहिबा को सब कुछ पता तो है, तो वो आलिमा साहिबा ना शोहर साहब, शाह साहब को, जी आप शोहर हैं, आप ये हैं, लेकिन मैं भी आखिर को मैं हूं, ठीक है ना, आप बेशक शौहर हैं क्योंकि मुझे आलिम होने के नाते इतना तो पता है कि आप शौहर हैं, आप बड़े हैं, लेकिन मैं भी मैं हूं, ठीक है ना। तो अब आप बताएं कि इस घर में फिर क्या होगा, वही होगा जो हर घर में हो रहा है आजकल, कि नहीं, कि आप शौहर तो हैं, आप बड़े तो हैं, लेकिन मैं भी बड़ी हूं, ठीक है ना। तो अब जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन होगा तो उस वक्त जो है ना वो क्या होगा कि आप अंता अंता अना अना, राइट, आप मैं, आप जो है वो अपनी डेढ़ ईंट की अलग मस्जिद में अपना हुक्म चलाए, मैं अपनी मस्जिद बनाऊंगी उसमें अंदर अपना हुक्म चलाऊंगी, ठीक है ना। आपका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस अलग है, मेरा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस अलग है, तो भाई ऐसे तो फिर कोई जमात नहीं चल सकती है ना, ऐसे तो कोई जमात नहीं चल सकती है ना। नीचे वाला तो अपना एक मशवरा दे सकता है, ठीक है ना, जमात के अंदर एक अमीर होता है, दो अमीर नहीं होते, तीन अमीर नहीं होते, तो बाकी जितने होते हैं ना वो मशवरा जरूर देते हैं, और मशवरा किस बुनियाद पे देते हैं, राय। एवरीवन हैज एन ओपिनियन, यस दैट्स ट्रू, एवरीवन हैज एन ओपिनियन, इसी वजह से मशवरा लिया जाता है, ठीक है ना। तो मशवरा तो हर बंदा जिससे मशवरा मांगा जा रहा है उसको देना चाहिए मशवरा, खैर ख्वाही के साथ अपने ओपिनियन को बयान कर देना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं कि जी आप अपने ओपिनियन पे कायम रहें अमीर साहब, मैं अपने ओपिनियन के ऊपर कायम रहूंगी, मैं भी अमीर साहब हूँ, मैं भी अमीर हूँ, ठीक है। ये अंदाज नहीं होना चाहिए, ये अंदाज जो है ना, ये बड़ा बड़ा खतरनाक अंदाज, ठीक है। इसकी इसलाह करने की जरूरत है। क्या कहा इन्होंने, कई दफा कोई गुनाह करते हैं महसूस होता है कि गुनाह है, फिर ये सोचने, अभी रहने दे बात। बहरहाल क्या समझ रहा है भाई किसी के, तो खुलासे तफसीर हो गई, मारूफ मसाइल भी थोड़ा सा जल्दी पढ़ लेते हैं कि पैगंबर पर जादू का असर हो सकता है। शुक्रिया। ये पैगंबर पर जादू का असर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये लोग नबी अलैहिस्सलाम को मशहूर कहते थे ना, यानी जिसके ऊपर जादू का असर हो गया, तो उसको फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं इसका मतलब क्या है। कि किसी नबी और पैगंबर पर जादू का असर हो जाना ऐसा ही मुमकिन है जैसा बीमारी का असर हो जाना, यानी जादू का मामला फिजिकल बीमारी का ही है, जैसे कोई बुखार में मुबतला हो जाता है, कोई किसी और किस्म की बीमारी में मुबतला हो जाता है, तो इसी तरह से जादू का भी यही मामला है। इसलिए कि अंबिया अलैहिस्सलाम बशरी खवास से अलग नहीं होते, जैसे उनको जख्म लग सकता है, जख्म भी तो एक फिजिकल बीमारी है ना, ठीक है, तो भाई कुछ चोट लग गई तो अब उसके अंदर से खून आ रहा है, पस आ रहा है, तो ये भी एक फिजिकल बीमारी ही है, ठीक है, जिस्मानी बीमारी। बुखार और दर्द हो सकता है अंबिया को, ऐसे ही जादू का असर भी हो सकता है, क्योंकि वो भी खास असबाब तबीया जिन्नात वगैरह के असर से होता है, जिन्नात वगैरह यानी जिन्नात के असर से भी जादू हो सकता है, और वगैरह जिन्नात के अलावा दूसरे असरात की भी वजह से जादू हो सकता है, ठीक है। जैसे कोई आप तो जादुई कलिमात होते हैं उनको पढ़ करके किसी की तरफ फूंक दें, या किसी चीज के चीज उसकी ले करके, तस्वीर वगैरह ले करके उसके ऊपर जादुई कलिमात लिख दें। अब जिन जिन ने नहीं लिखे, वो किसी इंसानी जादूगर ने लिखे, लेकिन तस्वीर लेकर के उसके ऊपर जादुई कलिमात लिख देने से उस बंदे के ऊपर जादू हो जाता है, यानी वो बंदा बीमार हो जाएगा, ठीक है, उसकी मेमोरी खराब हो जाएगी, उसको जो है वो शुगर हो जाएगा, उसको कैंसर हो जाएगा, उसको जो है वो कोई और इस किस्म का मर्ज हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन आपने जादुई कलमे के अंदर क्या लिखा है, ठीक है। किसी की जो है वो कपड़े का कोई टुकड़ा लेकर के, जो उसने कपड़ा इस्तेमाल किया हुआ है उसका टुकड़ा लेकर के आप उसके ऊपर कुछ कर दें, ठीक है ना, कंघी के उसके कंघी कंघी के जो वो दांत थे उसको लेकर के, क्योंकि कंघी के जो दांत होते हैं, कंघी जो होती है उससे जब इंसान अपने बालों में कंघी करता है ना, तो उसके बॉडी सेल्स जो है ना वो उस कंघी के साथ लग जाते हैं, उस कंघी के साथ चिपक जाते हैं, ठीक है ना, एंड दैट्स ऑल व्हाट यू मीन, समथिंग जिसका के उस शख्स के साथ ताल्लुक है, वो चीज आपको मिल जाए। बाल, बालों का उस शख्स के वजूद के साथ ताल्लुक था, बॉडी सेल्स, बॉडी सेल्स का उस वजूद के साथ ताल्लुक था, उसके वजूद के साथ ताल्लुक था, ठीक है ना, या तस्वीर, तस्वीर का भी उसके वजूद के साथ ताल्लुक है, ठीक है ना, कैमरे वाली तस्वीर, तस्वीर सॉरी तस्वीर नहीं, कैमरे वाली तस्वीर, ठीक है ना। अब अपने हाथ से किसी की तस्वीर ड्रॉ करेंगे ना, उस तस्वीर का उसके साथ ताल्लुक नहीं है, क्योंकि क्योंकि वो उसकी तस्वीर नहीं है, वो तो आपने अपने हाथ से ड्रॉ कर लिया कोई ना कोई चीज, कैमरे से जो खींची हुई तस्वीर होती है ये एग्जैक्टली उसी का अक्स होता है जो कि किसी कागज के ऊपर जो है वो आपने प्रिंट कर लिया होता है, वो असल तस्वीर है, असल उसकी शक्ल है जो कैमरे में आपने किसी कागज के ऊपर लेकर के कागज पर प्रिंट कर लिया, ठीक है, तो तस्वीर के ऊपर भी जादू हो सकता है, ठीक है। तो फरमाया कि जैसे उनको जख्म लग सकता है, बुखार और दर्द हो सकता है, ऐसे ही जादू का असर भी हो सकता है, क्योंकि वो भी खास असबाब तबीया जिन्नात वगैरह के असर से होता है। और हदीस में साबित भी है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी सहर का असर हो गया था, ठीक है, यानी वही जो मुआवज़तैन वाली सारी की सारी स्टोरी है, सारी की सारी जो उसकी शान नज़ूल है, आखिरी आयत में जो कुफ्फार ने आपको मसहूर कहा और कुरान मजीद ने उसकी तरदीद की, इसका हासिल वो है जिसकी तरफ खुलासे तफसीर में इशारा कर दिया गया है कि उनकी मुराद दर हकीकत मशहूर कहने से मजनून कहना था। इसी की तर्दीद कुरान मजीद ने फरमाई है, इसलिए हदीसे सहर इसके खिलाफ और मुतवारिस नहीं। क्या मतलब कि ये लोग जो नबी अलैहिस्सलाम को यहां पर मशहूर कह रहे हैं ना, और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये कैसी अजीब अजीब अलकाबात दे रहे हैं आप को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम पर जादू नहीं हो सकता। नबी अलैहिस्सलाम पर तो जादू हो सकता है और हुआ भी सही, हुआ नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जादू। तो फिर अल्लाह ताला किस बात की तरदीद कर रहे हैं? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये लोग जो है ना, वो जो मशहूर कह रहे हैं ये मजनून के मानी में मशहूर कह रहे हैं, लफ्ज कोई और इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन नीयत इनकी मजनून कहना है कि ये जुनूनी हो गए, जुनूनी। ठीक है, आयात मस्कूरा में से पहली व दूसरी आयत में जो मजमून आया है उसका एक खास शान नुजूल है, जो कुर्तुबी ने सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह से नकल किया है कि जब कुरान में सूरह तब्बत यदा अबी लहब नाजिल हुई, जिसमें अबू लहब की बीवी भी की भी मजम्मत मजकूर है, वो मरातुहु हम्मालतल हतब है ना, अबू लहब की बीवी का भी उसके अंदर बड़े मजम्मत के साथ जिक्र आया ना सूरह लहब के अंदर, तो उसकी बीवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में गई, यानी सगी चची थी ना वो। ठीक है, आजकल ताई बोलते हैं, ताई बाप से बड़ी जो होती है ना उनको ताई अब्बू और ताई अम्मी बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो है ना नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में गई, उस वक्त सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मजलिस में मौजूद थे, उसको दूर से देखकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि आप यहाँ से हट जाएं तो बेहतर है, क्योंकि ये औरत बड़ी बदजुबान है, ये ऐसी बातें कहेगी जिससे आपको तकलीफ पहुंचेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, इसके और मेरे दरमियान अल्लाह ताला पर्दा हायल कर देंगे। चुनाचे वो मजलिस में पहुंची मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देख सकी, तो सिद्दीक अकबर अल्लाह ताला से मुखातब होकर कहने लगी कि आपके साथी ने हमारी हजव की, यानी हमारी जो है ना वो बुराई बयान करी है, हमें बुरा भला कहा है उसने, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो लोगों को तब्बत यदा अबी लहब तब वाली सूरत पढ़ के सुना दी थी, तो उसके अंदर इसकी बुराई थी। ठीक है, तो सिद्दीक अकबर अल्लाह ताला ने फरमाया कि वल्लाही वो तो कोई शेर ही नहीं कहते जिसमें आदतन हिज्व की जाती है, यानी लोग उस जमाने में जो किसी की हिज्व करते थे ना, ठीक है, तो वो शेर की जुबान में करते। तो नबीम तो ये तो शेर कहते ही नहीं, तो हिज्व कैसे कर दी उन्होंने आपकी? ठीक है, कुछ लोग उसको हिजू भी पढ़ सकते हैं, हिजू या हिज्व, ठीक है, बहरहाल जो भी है इसका सब प्रोनाउंसिएशन। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि वल्लाही वो तो कोई शेर कहते ही नहीं जिसमें आदतन हिज्र की जाती है, तो वो ये कहती हुई चली गई कि तुम भी इनकी तस्दीक करने वालों में से हो। ठीक है, वो तो जो कहते हैं ना तुम भी वही कहते हो। तो उसके चले जाने के बाद सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ने अर्ज किया कि क्या उसने आपको देखा नहीं? तो आपसे फरमाया कि जब तक वो यहाँ रही एक फरिश्ता मेरे और उसके दरमियान पर्दा करता रहा। ठीक है, तो इसके ऊपर फरमाते हैं कि दुश्मनों की नजर से मस्तूर रहने का एक अमल। हजरत काब रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुशरिकीन की आंखों से मस्तूर होना चाहते तो कुरान मजीद की तीन आयतें पढ़ लेते थे, उसके असर से कुफार आपको नहीं देख सकते थे। वो तीन आयतें क्या हैं कि वो तीन आयतें हैं, एक आयत सूरह कहफ में है, यानी इन्ना जअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफकहू व फी आदानिहिम वक्रा। दूसरी आयत सूरह नखल में है, उलाइक अल्लज़ीना तबअ अल्लाहु अला कुलूबिहिम व समइहिम व अबसारिहिम। और तीसरी आयत सूरह जासिया में है, अफरअयता मन इत्तखदा इलाहहु हवाहु व अदल्लहु अल्लाहु अला इल्मिन व खतम अला समइहि व कल्बिहि व जअल अला बसरिहि गिशावा। तो हजरत काब रतान फरमाते हैं कि रसूल सल्लम का ये मामला मैंने मुल्क शाम के एक शख्स से बयान किया, उसको किसी जरूरत से रूमियों के मुल्क में जाना था, वहां गया और एक जमाने तक वहां मुकीम रहा, फिर रूमी कुफार ने उसको सताया तो वहां से भाग निकला, उन लोगों ने उसका ताकुब किया, इस शख्स को वो रिवायत याद आ गई और मस्कूरा तीन आयतें उसने पढ़ ली, तो कुदरत ने उनकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाला कि जिस रास्ते पर ये चल रहे थे उसी रास्ते पे दुश्मन गुजर रहे थे मगर वो उनको देख ना सकते थे। इमाम सालबी कहते हैं कि हजरत काब रजान से जो रिवायत नकल की गई है, मैंने रय के रहने वाले एक शख्स को बताई। ठीक है, रय जो है बकायदा एक शहर का नाम है। तो इत्तेफाक से ज़ैलम के कुफार ने उसको गिरफ्तार कर लिया, दैलम तो नहीं, पता नहीं। तो दैलम के कुफार ने उसको गिरफ्तार कर लिया, कुछ अरसा उनकी कैद में रहा। फिर एक रोज मौका पाकर भाग खड़ा हुआ, ये लोग उसके ताकू में निकले, मगर उस शख्स ने भी ये तीन आयतें पढ़ ली। उसका ये असर हुआ कि अल्लाह ने उनकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया कि वो उसको ना देख सके, हालांकि साथ साथ चल रहे थे और उनके कपड़े उनके कपड़ों से छू जाते थे, यानी इतना करीब थे लेकिन देख नहीं सकते थे। इमाम कुर्तुबी कहते हैं कि इन तीनों के साथ वो आयात सूरह यासीन की भी मिला ली जाए जिनको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के वक्त पढ़ा था, जबकि मुशरिकीन मक्का ने आपके मकान का मुहासरा कर रखा था, तो आपने ये आयात पढ़ी और उनके दरमियान से निकलते हुए चले गए, बल्कि उनके सरों पर मट्टी डालते हुए गए, उनमें से किसी को खबर नहीं हुई। वो आयात सूरह यासीन की ये है, वल कुरआनिल हकीम यासीन और कुरआनिल हकीम इन्नक लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम तंजीलुल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िरा क़ौमन मा उन्ज़िरा आबाउहुम वहुम ग़ाफ़िलून لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. إمام قرطبي فرماتے ہیں کہ مجھے خود اپنے ملک اندلس میں قرطبہ کے قریب قلعہ منصور میں یہ واقعہ پیش آیا کہ میں دشمن کے سامنے بھاگا اور ایک گوشے میں بیٹھ گیا، دشمن نے دو گھوڑے سوار میرے تعاقب میں بھیجے اور میں بالکل کھلے میدان میں تھا، کوئی چیز پردہ کرنے والی نہ تھی مگر میں سورہ یاسین کی آیتیں پڑھ رہا تھا، یہ دونوں سوار میرے برابر سے گزرے، پھر جہاں سے آئے تھے یہ کہتے ہوئے لوٹ گئے کہ یہ شخص کوئی شیطان ہے کیونکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مجھ سے اندھا کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو آیات ہیں سورہ یاسین کی، صرف یہ دو آیات بھی فرماتے ہیں کہ یہ دو آیات بھی کافی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، بلکہ یہ دو آیات نہیں صرف ایک ہی آیت، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ٹھیک ہے، تو یہ بھی پڑھ کے کسی کی طرف جو ہے نا وہ کان پھونک دے تو اس کی نگاہوں سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو اوجھل کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ ساری کی ساری بات ہے جو کہ اگلی کلاس کے اندر ہی کر لیں گے کیونکہ کافی ایکسٹرا ٹائم ہو چکا ہے، اگر اگلی کلاس میں یاد رہا تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر کے پھر آگے بڑھیں گے، اگر کوئی یاد دلا دے گا آپ میں سے تو ہو جائے گی، ورنہ شاید ہمارے ذہن میں رہے نہ رہے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے ابھی اس کے علاوہ تو پوچھ سکتے ہیں۔ کسی نے لکھا تھا یہاں پہ، میں نے اسکپ کر دیا تھا، کہ بعض دفعہ کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے، پر یہی سوچ لیتے ہیں کہ معافی مانگ لیں گے، تو کیسے اس کو ٹھیک کریں؟ معافی مانگ لیں گے، معافی مانگنے کی نیت سے جو ہے وہ گناہ کرنا، تو کہتے تو ہیں کہ جی یہ اس سے بہتر ہے کہ معافی مانگنے کی نیت ہی نہیں ہے اور ایسی گناہ کر دیا، اس سے تو یہ بہتر ہے، لیکن یہ طریقہ جو ہے نا یہ نیکوں کا طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بلکہ یہ جو ہے نا وہ گناہ گاروں کا طریقہ ہے، اور اس کے اوپر پھر گناہ کی جو سزا ہوتی ہے نا وہ پھر مل جاتی ہے، جیسے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یہی کام کیا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ ہم جو ہے نا وہ بعد میں نیک بن جائیں گے، ومن بعدہ کیا ہے وہ قومن صالحین، اسی طرح کہا تھا نا کہ جب یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے یہ والی حرکت کر دی تھی نا، تو اس وقت انہوں نے یہی نیت کری تھی کہ ابھی جو ہے نا وہ یوسف کو کر دو اس طریقے سے غائب، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ قوم الصالحین کے اندر سے ان میں شامل ہو جانا، یعنی توبہ کر لی تھی۔ تو اب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے ساتھ جو کچھ ہوا تو وہ تو ہم سورہ یوسف کی تفسیر کے اندر پڑھ ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو انسان جو ہے نا وہ اسی بات سے ڈرے کہ بھائی یہ جو ہے نا کہ بعد میں میں نیک بن جاؤں گا یا بعد میں میں اس کو ٹھیک کر لوں گا یا بعد میں میں توبہ کر لوں گا، تو نیت تو آپ کی بڑی اچھی ہے بعد میں توبہ کرنے کی، ٹھیک ہے، لیکن سزا جو ہے نا وہ پھر ملے گی، اور سزا کے لیے کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی سزا، وہ کیا سزا ہوگی، کیسی سزا ہوگی، کہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس گناہ کی وجہ سے رسوا کریں گے، ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس کے لیے تیار ہیں تو بہت بڑی یعنی دلیری کی بات ہے، یہ بہت بڑی دلیری اور بہت بڑی بے خوفی کی بات ہے، ایسا ہرگز نہیں کہنا چاہیے، بس یہ سوچ جو ہے نا انسان کی کہ گناہ کے اوپر سزا مل کے رہے گی، میں یہ عمل سوئیں